हम सब लोग मानव जीवन के तथ्यों पर विचार कर रहे हैं। एक बहुत ही प्रत्यक्ष सत्य है कि वस्तुतः इस दृश्य जगत में कुछ भी अपना व्यक्तिगत नहीं है। जो कुछ है अपने पास मिला हुआ सा मालूम होता है, वह सब किसी का दिया हुआ है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है, प्राप्त नहीं है। फिर भी एक बड़ी भारी भूल अपने से हुई कि मिले हुए शरीर को मैंने अपना माना और उस पर पूरा अपना अधिकार माना। उसके माध्यम से हम जो चाहें सो कर सकते हैं ऐसा माना। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेने की भूल से बड़ी भारी पराधीनता जीवन में आ गई, क्योंकि एक शरीर को अपना मान लेने से फिर उस बनने बदलने और बिगड़ने वाली वस्तु की सारी आवश्यकताएं अपनी आवश्यकताएं जैसे लगने लगती हैं। तो बहुत सा सामान भी चाहिए, सुरक्षित स्थान भी चाहिए, तन की खुराक भी चाहिए, मन की खुराक भी चाहिए। शरीरों को अपना मान लेने का यह फल होता है कि हम बहुत ही पराधीन हो जाते हैं। स्वाधीनता स्वभाव से पसंद है हर भाई को, हर बहन को, और बड़ी दयनीय दशा मैंने देखी है अपनी कि पसंद है स्वाधीनता, पसंद है सम्मान पूर्वक जीना, और शरीर को अपना मान लेने से इतने हम पराधीन हो जाते हैं प्रतीत होने वाले जगत के, सम्मान पूर्वक जीना तो कभी संभव ही नहीं होता। तो चाहते क्या है? तो चाहते तो यह है कि जब कभी भूख लगे तो रुचिकर स्वादिष्ट स्वास्थ्यकर भोजन बड़े आदर और प्रेम के साथ मिल जाए। रुचिकर भी हो, स्वास्थ्यकर भी हो, स्वादिष्ट भी हो, और वो भी खूब आदर सम्मान के साथ मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी रुचिकर मिलता है, कभी रुचिकर नहीं मिलता है, कभी स्वादिष्ट मिलता है, कभी स्वादिष्ट नहीं मिलता है, कभी सम्मान पूर्वक मिलता है, कभी उतने सम्मान के साथ नहीं मिलता है। तो इस घोर पराधीनता को स्वीकार करके भी हम सब लोग सम्मान पसंद करते हैं, स्वाधीनता पसंद करते हैं, ये संभव होता नहीं है। और ऐसी हालत में अगर परम स्वाधीन जीवन पर दृष्टि न जाए, निज स्वरूप की स्वाधीनता की मस्ती पर दृष्टि न जाए, तो व्यक्ति में भीतर भीतर बहुत प्रकार के कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं। कितनी सुपीरियरिटी, कितनी इंफीरियोरिटी, कितनी हीन भावना भीतर से उपजती है, और ऊपर से जबरदस्ती अपने को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर करके किसी तरह से अपमान जनित दुख, पराधीनता जनित दुख को हम लोग ढकने की चेष्टा करते रहते हैं। किसी किसी समय जिन निकटवर्तियों के सहयोग से दैनिक जीवन का काम चल रहा है, उनकी ओर से अगर उतना सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं मिला तो भीतर भीतर दुख होता है। तो मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि अकिंचन अचाह अप्रयत्न, ये स्वाधीन जीवन के लिए, पूर्ण जीवन के लिए अनिवार्य व्रत हैं। अकिंचन अर्थात मेरा कुछ नहीं है, अचाह अर्थात मुझे कुछ नहीं चाहिए, अप्रयत्न अर्थात अपने लिए कुछ नहीं करना है, तो पराश्रय छोड़ना, परिश्रम छोड़ना, प्रयास छोड़ना जरूरी है। पराश्रय छोड़ेंगे तो स्वाश्रय अथवा हरियाश्रय सिद्ध होगा, परिश्रम छोड़ेंगे श्रम रहित होंगे और प्रयास होंगे तो शरीरों से तादात्म्य तोड़ने की सामर्थ्य आएगी, अशरीरी अलौकिक तत्वों से अभिन्नता होगी। तो अपने को जो पसंद है जैसा जीवन वैसा तो अकिंचन अचाह अप्रयत्न होने से ही सिद्ध होता है। तो जब बाहरी बातों से सम्मान पर आघात पहुंचता है, पराधीनता की पीड़ा सताती है, तो मैं अपने को याद दिलाती हूँ। आपको भी पसंद आए तो अपने को याद दिलाना लाभ तो जरूर होता है। क्या याद दिलाती हूँ कि सचमुच अविनाशी अलौकिक जीवन का जो अधिकारी है मानव मात्र साधक मात्र जन्मसिद्ध अधिकारी है। इतना ही नहीं, ऐसा भी सुना है हम लोगों ने कि जीवन दाता जन्मदाता ने मानव बनाकर हम लोगों को संसार में इसीलिए रखा है कि हम ज्ञान और प्रेम जैसे अलौकिक तत्वों के विकास के द्वारा सब प्रकार से जीवन को परिपूर्ण कर लें, इसी उद्देश्य से बना के उन्होंने भेजा है। तो इस जीवन के मूल में भी यह उद्देश्य है और अलौकिक तथा अविनाशी तत्वों की अभिव्यक्ति में ही सर्व दुखों की निवृत्ति है, अपने को पसंद भी है। तो अब सोच करके देखिए कि निज स्वरूप के आनंद का जो अधिकारी है वह नाशवान संसार की किसी वस्तु के प्रति लालच रखे भीतर, तो इससे बढ़कर उसके जीवन का अपमान और कुछ होगा? समझ में आया कि नहीं? अविनाशी जीवन का जो अधिकारी है, निज स्वरूप के बोध के आनंद का जो अधिकारी है, परम प्रेमास्पद प्रभु के मधुर रस का जो अधिकारी है, वो बनने बिगड़ने वाले पर प्रकाश के जगत की ओर देखे और किसी वस्तु की कामना रखे, तो क्या अपने भीतर कामनाओं को रखना ही अपने जीवन का अनादर करना नहीं है? है ना? तो अपना अनादर आप जितना मैं कर रही हूं उतना कोई और कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। यही की चर्चा है। मैंने एक बार ऐसा सुना था कि आनंदमयी माता जी से प्रश्न कर दिया गया कि आप अपनी पूजा क्यों करवाती हैं, अगर आप अपने को भगवान मानती हैं तो भगवान है ऐसा प्रमाणित करके दिखाइए और नहीं तो अपनी पूजा करवाना बंद करिए। तो माँ ने बड़ी सरलता से कहा कि मैं पूजा करवाती नहीं हूँ, करने वाले जो जी में आता है करते हैं, मैं कराती नहीं हूँ, और मेरे लिए तो इस शरीर पर कोई चंदन लगा दे या कोई दिष्टा लगा दे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहा उन्होंने। कोई चंदन लाके लगा दे या कोई दिष्टा लगा दे, दिष्टा समझते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने लिए बराबर है। तो ऐसे जन जो हैं उनको बाहर से कोई अपमानित कर सकेगा? कभी नहीं कर सकता। तो दूसरों ने हमें दुख दिया, दूसरों ने हमारे सम्मान में बाधा पहुंचाई, ऐसा तो सोचना ही बिल्कुल बेकार की बात है। अगर सोचना ही चाहिए तो ऐसा सोचना चाहिए कि परम स्वाधीन जीवन हमारा अपना स्वरूप है, देहातीत स्वाधीनता का आनंद इस मानव जीवन की मौलिकता है। उसके रहते हुए अगर मैंने पराश्रय पसंद किया है, परिश्रम पसंद किया है, तो जिसने पराश्रय पसंद किया वो कब तक स्वाधीनता की कुशल मनाएगा? पराश्रय पराधीनता को पसंद करने वाला कभी भी स्वाधीनता नहीं पा सकता, हो ही नहीं सकती कभी। तो ऐसे अगर आप सोचें अकेले में बैठ करके अपनी ओर देख करके, तो प्रतिदिन के जीवन में, दैनिक व्यवहारिक पारिवारिक और सामाजिक जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए जो हम लोग भीतर से क्षुब्ध होते रहते हैं, तो वो क्षोभ खत्म हो जाए, परस्पर का वैमनस्य खत्म हो जाए, एक ने जरा सी गलती मेरे साथ की तो मुझको इसमें बड़ा अपना गौरव मालूम होता है कि जितना उसने मेरे साथ किया उसका दुगना चौगुना हम उसके साथ करके दिखाएंगे। तो यह मानवता की प्रतिक्रिया है कि अमानवता की? अमानवता की प्रतिक्रिया हो गई। अरे भाई, एक कदम नीचे वो उतरा तो पांच कदम नीचे मैं उतर जाऊं, तो उसका नुकसान तो कम हुआ, अपना नुकसान ज्यादा हुआ। और भीतर शांति सुरक्षित रहे, प्रसन्नता सुरक्षित रहे, ये बहुत बढ़िया बात है साधक के लिए अपने साध्य की ओर आगे बढ़ते रहने की, और सहायक बात है। और कोई भी समय ऐसा आ जाए जबकि भीतर से मुझे किसी कारण से क्षोभ हो जाए, तो बाहर की ओर उतना ज्यादा देखने की आदत नहीं है, तो भीतर की ओर देखती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, सब काम छोड़ देती हूँ। क्षुब्ध दशा में कोई भी काम करो तो बढ़िया तो हो नहीं सकेगा, छोड़ करके चुपचाप बैठ करके कि बाहर से जो हो रहा है वो तो हो रहा है, उसकी प्रतिक्रिया मुझ पर क्या हो रही है वो अधिक महत्वपूर्ण है अपने लिए। तो प्रतिक्रिया को देखो, उसका अध्ययन करो, उसके कारण को मिटाओ, तो बिल्कुल बाहर की दशा चाहे जो भी हो, अंदर से आदमी शांत हो जाता है। परिस्थिति भले ही न बदले लेकिन अपने भीतर शांति आ जाती है। तो जब शांति आ जाती है, जब मानसिक हलचल खत्म हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उठी हुई हलचल को थोड़ा पहले अपने भीतर दबाना पड़ता है कि उल्टी सीधी प्रतिक्रिया न हो जाए, फिर उसके बाद साधक की हैसियत से उसका अध्ययन करना पड़ता है, फिर सत्य के ज्ञान के प्रभु विश्वास के प्रकाश में उसका निवारण करना पड़ता है। तो इतना समय जो निकल जाता है इस मामले में, तो मुझे लगता है कि इतनी देर शांति से बिछुड़कर, प्रसन्नता से बिछुड़कर, प्यारे प्रभु की कृपामयी लीला हो रही है, मेरे सुधार के लिए हो रही है, मेरे राग निवृत्ति के लिए हो रही है, इस पर से दृष्टि हट गई, क्षोभ आ गया, रक्त के रासायनिक पदार्थ बदल गए, कहीं कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कहीं सिर में दर्द होता है, कहीं पेट में गैस भरता है, ये सब जो शारीरिक विकृतियां हैं ये सब मानसिक अप्रियता, डिसलाइकिंग, कोई भी बात अपने पसंद के खिलाफ हो गई तो सज्जनता के नाते अपने को संभालता है व्यक्ति। बहुत बार असमर्थता के कारण मन ही मन मचल करके रह जाता है, बाहर से कुछ करते नहीं बनता, फिर साधक होने के नाते उसकी व्याख्या करके उसका निवारण करता है, फिर अलौकिक जीवन पर दृष्टि रखकर अनंत परमात्मा का विश्वासी होकर उनके समर्पित होकर भीतर की शांति और सरसता को वापस लाता है। इतने स्टेप्स होते हैं इसके भीतर। तो इन सब बातों पर ध्यान दे करके आप देखिए, जब कभी ऐसा मौका आता है तो मैं देखती हूँ तो बड़ा कभी कभी अफसोस होता है कि उतनी देर में हम और अधिक निकटता अनुभव किए होते, किसी से अपने मौलिक तत्वों से, जीवन के मौलिक तत्व परम शांति, परम स्वाधीनता, परम प्रेम, तो अगर बीच में क्षोभ न उठा होता, रासायनिक परिवर्तन शरीर में न हुए होते, तन में और मन में अनेक प्रकार के विकार न पैदा हुए होते, तो इनके निवारण के लिए, इनको संभालने के लिए जो समय मुझको लगाना पड़ा, जो शक्ति मुझे खर्च करनी पड़ी, वो सारी शक्ति और वो सारा समय कहाँ गया होता? तो साधना के पथ पर साध्य से निकटता अनुभव करने में गया होता। तो किसी किसी समय तो इतनी भीतर से पीड़ा होती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो समय तो जैसे कि मृत्यु के समान हो गया, मानव जीवन की सजगता चली गई और इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं में शक्ति लग गई जो कि हमारे लिए हानिकारक हैं, तो वो तो मृत्यु के समान है साधक के लिए। ऐसे प्रतिदिन के जीवन में जिन विकारों के कारण हम सत्य से दूर हो जाते हैं, शांति से दूर हो जाते हैं, हृदय की प्रियता से दूर हो जाते हैं, उन सब बातों को हटा के ही रखना चाहिए, अपने को बचा के ही रखना चाहिए। इसके विपरीत और भी एक चीज मैंने बड़ी विचित्र देखी है जीवन में और बहुत स्पष्ट अनुभव है मुझको उसका। वो क्या है कि जैसे परिस्थितियों की अनुकूलता मिले, पसंद के लायक कोई खाने पीने की चीज मिल गई या मन पसंद कोई और बात मिल गई, तो एक एक अवसर मैंने ऐसा पाया कि परस्पर बैठ करके सत्संग की बातचीत हो रही है, और केवल बातचीत नहीं हो रही है, सत्य के प्रकाश में जीवन को देखकर जो त्याज्य है उसके त्यागने की बात, जो ग्राह्य है उसको ग्रहण करने की बात चल रही है अपने द्वारा, तो बहुत ही सिंसियर और ईमानदार साधकों की, दो चार साधकों की टोली बैठी है और इस तरह की बातचीत हो रही है। कभी कभी स्वामी जी महाराज के पास हम बैठे होते और इस तरह की बातें होती, तो उसमें ऐसा मैंने पाया कि ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, बहुत थोड़ी सी बात है, अगर जरा सी देर के लिए ध्यान में आ गया कि यह जो दृश्य आकृति अपनी दिखाई देती है, मैं उसके भीतर कैद कभी नहीं हुआ, वह तो केवल एक क्रियात्मक संयोग है, शरीरों के माध्यम से प्रतीत होने वाले परिवर्तनशील जगत का संयोग, पसंद करेंगे कुछ सुख चाहेंगे तो इन शरीरों से संबंध जुट जाएगा, आंखों से सुंदर दृश्य देखना पसंद आएगा तो आंखों से तादात्म्य हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि देवकी जी, सुंदर दृश्य देखने से कोई संसार में फंस जाता हो ऐसी बात नहीं है, आंखों के माध्यम से प्रतीत होने वाले जगत में सुंदरता का भास ये भूल तुम्हारे भीतर पहले से है और इस भूल ने आंखों से सुंदरता देखने का राग पैदा पहले किया और भीतर में राग है तो तब कामना उत्पन्न होती है देखने की और भीतर में नाशवान संसार के प्रति सुंदरता का भास है तो उसमें आकर्षण होता है। तो राग है पहले से, आकर्षण है पहले से और भोग की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है पीछे से। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि संसार सुंदर है इसलिए हम फंस गए। ऐसा सोचना चाहिए कि इस नाशवान में सुंदरता का भास मुझ में भूल पहले से है, अन्यथा विवेकी जन को सुंदरता का भास नहीं होता है और जो सब दृष्टियों से पार हो जाते हैं उनको सुंदरता असुंदरता कुछ भी नहीं दिखती है। तो ऐसा जब कभी विचार करते 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 अपने निज स्वरूप की बात सामने आ जाती अथवा कैसा भी कोई कितने जन्म का भटका हुआ व्यक्ति क्यों न हो प्रभु की कृपा का आश्रय लेता है अथवा कृपाश्रित हो करके रहना पसंद करता है तो किस प्रकार प्रभु की कृपा शक्ति उसकी मलिनता को जल्दी जल्दी दूर करती है, अपने ही में विद्यमान वह कृपा का सागर कैसे अपने को संभालता है, ये सब चर्चा होती। और होती तो जरा सी देर की बात होती है, बहुत मामूली बात होती है कि जिसके साथ मेरा बनावट से संबंध नहीं है, केवल कामना से संबंध जुट जाता है, उस कामनाओं से फ्री होते ही उसकी आवश्यकता नहीं है मुझे, इसको अनुभव करते ही तत्काल वो उससे संबंध टूटता है और इतना हल्कापन, इतना आराम अपने आप को मिलता है उसी समय तत्काल। और कहीं अपनी ही असमर्थता से पीड़ित व्यक्ति अहम शून्य होकर उस सर्व सामर्थ्यवान की शरणागति पसंद करता है तो जिस समय किसी ईश्वर विश्वासी ने उनकी महिमा को सुनाया और मैंने अपनी असमर्थता को देखकर उस सर्व सामर्थ्यवान की शरण ली नहीं कि जीवन कहां से कहां पहुंचता है, कितना आराम मिलता है, कितना स्वस्थ होता है, कितना हल्कापन आता है, कितना भीतर भीतर रस बढ़ता है, ये सब होता है चाहे साधकों की गोष्ठी हो चाहे संत समागम हो, ये सब होता है। तो ऐसे अवसर अनेक आए जब मैंने अपने को अनेकों विकारों और दुर्बलताओं से फ्री, बड़ी बड़ी सरसता और बड़ा हल्केपन में पाया। अगर उसी में कुछ काल ठहर जाए तो बड़ा उपकार हो जाता है। अगर उसी क्षण में जैसे घंटी लगा के काम करने की रूटीन जहां बन जाती है उसी क्षण में चाय नाश्ता की घंटी लग गई और उठकर आप नहीं गए तो ला करके किसी ने हाथ में पकड़ा दिया और मैं क्या बताऊं कितनी जल्दी सब बढ़िया बढ़िया बातें जो थी, सब अच्छा अच्छा अनुभव जो था, स्वादिष्ट वस्तु को मुख में डालो, खाद्य पदार्थ का जीभ से स्पर्श हुआ, सलिवरी ग्लैंड्स ने काम करना शुरू किया, रसना से स्वाद का सुख भासित हुआ नहीं कि देहातीत जीवन की बातें और उस सर्व सामर्थ्यवान की शरणागति में कितनी विश्रांति थी, कितना आराम था, कहाँ हम थे, कैसे जो सब लुप्त हो जाता है, कहाँ चला जाता है और सब सब आकर के इस शरीर के माध्यम से एक छोटी सी क्रिया में फंस करके सारा मामला चौपट हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। एक दो बार ऐसा हुआ जब मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ मालूम हुई। हमने कहा कि ये तो सब चौपट ही हो रहा है भाई, इतनी जल्दी बदलता है। अब सोचिए आप, शरीर के माध्यम से सुख की बात भीतर में आई नहीं कि शरीरों के पार जो कुछ है सब छिप गया, और सत्संग के प्रकाश में एक एक कदम केवल विचार के स्तर पर इन संबंधों को छोड़ते हुए चले जाओ तो इससे संबंध तो सदा से टूटा हुआ रहता ही है। सारी वृत्तियां सब शक्तियां सिमट करके जब जब एक पॉइंट पर आकर केंद्रीभूत होती हैं तो इधर से हटी नहीं कि इधर का सब भार सब झंझट काल एकदम उसी समय समाप्त होता है। देर नहीं लगती है, पता नहीं कितना समय बीत गया। थोड़ी थोड़ी देर के लिए शांत रहने के प्रयास में ऐसा लगता है कि बड़ा कठिन काम है। कोई कोई साधक जो शरीर और मन अर्थात इससे संपूर्ण व्यक्तित्व का जो ये लौकिक पहलू है, इस पहलू से उलझ करके साधकों ने कितना कितना समय बिताया है। अभी इस एक वस्तु को न खाने का व्रत लेंगे तो जबरदस्ती व्रत ले रहे हैं, खाए हुए भोगे हुए के प्रभाव से रह रह के उस वस्तु के खाने का संकल्प उठ रहा है, फिर जोर डाल करके उस संकल्प को दबा रहे हैं, तो क्रिया से अपने को रोक लिए तो कामना के रूप में रह गया, फिर अशांति के रूप में रह गया, फिर मानसिक तनाव के रूप में रह गया, और कहां कहां तक वो जाता है। विवेक के प्रकाश में व्यक्ति अपने को थामता है। तो मैंने मनोविज्ञान में ऐसा पढ़ा कि जब जबरदस्ती करके विचार के प्रकाश से व्यक्ति अपने को रोक लेता है तो भीतर का जो दबा हुआ राग है वो चेतन स्तर पर आता नहीं है, वासना और कामना के रूप में कॉन्शियस लेवल पर आएगा तब न उसके प्रति आप क्रियाशील होंगे। तो डर के मारे भीतर का दबा हुआ राग कॉन्शियस लेवल पर आता नहीं है और भीतर भीतर इतना बेचैन रखता है व्यक्ति को कि कुछ समय के लिए एक जगह पर शांत चुपचाप बैठा ही नहीं जाता। कितना असंतुलन, कितनी विकृतियां ये सब हो जाती हैं, और तब आदमी सोचता रहता है, निराश होता रहता है, घबराता रहता है। इसलिए सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? सही प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए कि जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण हम सब भाई बहनों को बनाना चाहिए। सबसे पहली बात है सही दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? तो सही दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि भाई जिन शरीरों के माध्यम से सुख दुख के द्वंद में फंसे हुए आज तक अपने को संतुष्टि नहीं मिली, उनमें सत्यता सुखरूपता का भ्रम न रखा जाए, ये पहली बात। बड़ा आराम मिलता है इससे, बहुत आराम मिलता है। फिर दूसरी बात क्या आएगी, स्वभाव से आएगी अपने सामने, कि यदि अपने ही में विद्यमान शांति की स्वस्थता को आप पसंद करते हैं, बहुत स्वस्थता है शांति में, जितना ही अधिक हम शांति को सुरक्षित रखेंगे मन और तन बहुत जल्दी जल्दी स्वास्थ्य लाभ करते हैं। और इनके स्वस्थ होने की पहचान क्या है कि जब आप चाहें इनका जैसा उपयोग वैसा करें और जब चाहें तो इनसे असंग हो जाएं, ऐसा होता है। तो शांति को सुरक्षित रखना बहुत ही उपयोगी बात है। और शांति सुरक्षित रहेगी कैसे, तो उस अविनाशी जीवन पर दृष्टि रखने से। जो शांति मुझे पसंद है अपने ही में विद्यमान है, जो अमरत्व अपने को पसंद है वह अपना स्वरूप ही है, जिस परम प्रेमास्पद के मधुर रस की प्यास है भीतर, जिसके बिना आज तक किसी प्रकार से तृप्ति हो ही नहीं सकी, वह अपने ही में विद्यमान है। तो जो अपने ही में है उससे अभिन्न होने के लिए बाहर की सब इच्छाओं को, सब कामनाओं को, सब वासनाओं को छोड़ देना चाहिए। और फिर नई वासना पैदा होगी नहीं, नई कामना पैदा होगी नहीं, लेकिन भुक्त अभुक्त प्रभावों का नाश कैसे होगा। पहले जो भोग कर चुके हैं उसका स्टैंप भीतर अहम में लग चुका है, उसका नाश कैसे होगा। उसके नाश के लिए बहुत ही व्यावहारिक उपाय है दुखी जनों के दुख में शामिल होना। तो अगर कुछ किए बिना रहा न जाए तो सेवा प्रवृत्ति में हाथ डालना चाहिए। और एक शरीर के प्रति भी जो कुछ करना हो वह सेवा के ही भाव से करना चाहिए, सुख भोग के भाव से नहीं करना चाहिए। बड़ा सूक्ष्म भेद है और प्रारंभ में दोनों ही बातें मिली जुली हुई रहती हैं। और कितनी बार तो मैंने अपने को देखा है कि पसंदगी भी है और सेवा के रूप में उस पसंदगी को रैशनलाइज करके उसमें आदमी फंस भी जाता है, लेकिन साधक की सच्चाई है तो उस फसावट में से आदमी निकलता भी है। तो प्रारंभ में थोड़ा बहुत मिश्रण रहेगा, लेकिन ईमानदार साधक में सत्य का दिया हुआ बल आता है, समर्पित साधक में सर्वसमर्थ स्वामी का दिया हुआ बल आता है और इन सारी दुर्बलताओं पर आदमी विजय पाता है। इसलिए हारना नहीं, डरना नहीं, निराश मत होना, कदम उठाना अपना पुरुषार्थ है और हमको पार लगाना प्रभु की प्रतिज्ञा है, वो करेंगे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। तो जहां तक हो सके वस्तुओं में सुख रूपता सुंदरता का भाव, ये इस भूल को विचार के आधार पर बिल्कुल ही निर्मूल कर देना चाहिए। और फिर अगर कोई प्रवृत्ति आती है सामने तो सेवा भाव से उसमें भाग लेना चाहिए। और जहां भी कहीं आपको शांति संपादन का अवसर मिले अथवा उच्च कोटि का ऐसा सत्संग कि जिसमें विचार करते जा रहे हैं छोड़ते जा रहे हैं, जिसमें कि हरियाश्रय के आधार पर अहम शून्य होने का मौका लगे, ऐसा कोई अवसर मिले तो कभी नहीं चूकना। और फिर घड़ी देखने की बात भी खत्म कर देनी चाहिए। उस शांति को जितनी देर तक सुरक्षित रख पाएंगे उतनी ही देर में अहम रूपी अणु में से अलौकिक तत्वों का ऐसा विकास होता है कि उसके बाद फिर पीछे हटने का प्रश्न साधक के सामने नहीं आता, नहीं हटता है। बहुत ही एकांतिक साधना की बात है। तो समय कम है अपने पास, परिस्थितियां बहुत ही उलझी हुई हैं, अनेक प्रकार की बाहरी कठिनाइयां भी आज मानव समाज को व्यग्र कर रहा है। कभी कभी भीतर भीतर जब राजनैतिक बातों को मैं देखती हूँ, सामाजिक बातों को देखती हूँ, सांप्रदायिक बातों को देखती हूँ, तो घबरा करके कभी कभी अनंत परमात्मा से प्रार्थना करने लग जाती हूँ, हे प्रभु कम से कम साधक जन जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनकी स्वाधीनता सुरक्षित रखना, भाई देश में, समाज में, वायुमंडल में कम से कम इस प्रकार की बात भी तो हो। आज देखिए इन सबके सहयोग से ही तो हम सब लोग इस जगह पर बैठ करके शांतिपूर्वक बातचीत कर रहे हैं, वो समाज का भी सहयोग है, राष्ट्र का भी सहयोग है, प्रकृति भी अनुकूल है, तब ये बात सिद्ध हो रही है। तो जहाँ तक सेवा के द्वारा राग निवृत्ति का प्रश्न है, जहाँ तक बैठ करके ग्रंथों के वाक्यों के आधार पर विचार करने की बात है, जहाँ तक शरीरों से अतीत अविनाशी जीवन के अनुभव के लिए तैयारी की बात है, उसमें तो भाई प्राप्त अवसर का अधिक से अधिक लाभ अपने लोगों को ले ही लेना चाहिए। किस समय क्या असुविधा पैदा हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता, और जब जब जीवन की मांग तीव्र हो जाएगी, जब सेवा की अनिवार्यता राग निवृत्ति के लिए पूरी हो जाएगी, जन समाज के हित के लिए तो हमेशा ही होता रहेगा, राग निवृत्ति के लिए पूरी हो जाएगी, जब प्रभु प्रेम की प्यास अति तीव्र हो जाएगी, तब तो फिर अपने लिए कुछ करणीय शेष रहेगा ही नहीं। तो आवश्यकता की तीव्रता और आवश्यकता की पूर्ति को स्वामी जी महाराज ने युगपद कहा है, साथ साथ होने वाली बात कही है। और चूंकि ये सब अलौकिक तत्व हम भाई बहनों में अपने ही में विद्यमान हैं, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति में कोई शंका नहीं रखने की बात है, उसमें कोई अनाधिकारी होने की बात नहीं है। जब जब जीवन के प्रश्न को लेकर संत के पास बैठ करके प्रश्न किया करना आरंभ किया मैंने, तो मुझे बहुत ही सुलझा हुआ उत्तर मिला। जब जब जन्म मरण और सुख दुख के द्वंद से उलझी हुई बुद्धि के कारण थकित हो गई थी मैं, तो मैंने स्वामी जी महाराज से डायरेक्ट बिल्कुल सीधा प्रश्न किया, महाराज जीवन है कि नहीं? तो उन्होंने कहा है। बड़ा आराम मिला। अगर सचमुच आप भीतर से प्रश्न लेकर व्यग्र हैं, तो सच्चा उत्तर पाते ही बिना किसी और प्रयास के शांति मिलती है। कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं, भरी सभा में और क्या बात बहुत हो सकती है। तुम्हारा कोई प्रश्न है? हाँ महाराज है। क्या है? तो थोड़ा सा सुख दुख का चित्र सुनाया। हमने कहा ऐसी जिंदगी क्या करूंगी, महाराज मैं जानना चाहती हूँ जीवन है कि नहीं। तो उन्होंने कहा है। तो आंखों के सामने से जैसे निराशा का अंधकार हट गया हो। उनका अच्छा है। तो तत्काल दूसरा प्रश्न, किसको मिलता है? क्योंकि अब पता चले कि किसको मिलता है तो देखें कि हमको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि कहीं कोई गुंजाइश है कि नहीं। तो किसको मिलता है? तो सबको मिलता है। तो पहले निराशा हटी, फिर आशा जगी कि अच्छा भाई सबको मिलता है तो उसमें मैं भी शामिल हो सकती हूँ। और कैसे मिलता है? अब पुरुषार्थ भी तो चाहिए ना, अब वो तरीका भी हमको मालूम होना चाहिए तब हम लेंगे। कैसे मिलता है? जो उसकी आवश्यकता अनुभव करता है उसको, आवश्यकता अनुभव करने से मिलता है। जीवन है और सबको मिल सकता है। किस उपाय से? आवश्यकता अनुभव करने मात्र से। बिल्कुल सच्ची बात है, जो दूर है उसको पकड़ने के लिए चल के जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। जो खोया हुआ है उसको ढूंढने के लिए मेहनत लगानी पड़ेगी, बुद्धि लगानी पड़ेगी। जो नित्य प्राप्त है, सर्वत्र सदैव विद्यमान है, अपने भीतर बाहर भरपूर है, तो जो नित्य प्राप्त है उसको बाहर बाहर खोजने के लिए दौड़ेंगे तो उस नित्य प्राप्त से दूर हो जाएंगे कि नजदीक हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। जो अपने ही में विद्यमान है, अपने से अधिक अपने को प्यार करने वाला है, जो अपने से अधिक अपना हित चिंतक है, तो जो सब प्रकार से अपने ही में है, ऐसा मैं कब तक कहती रही? समझ की बातों को सुन सुन कर कहना सीखा अपने को समझाने के लिए, तो ऐसा मैं कब तक कहती रही? तब तक कहती रही जब तक अपने व्यक्तित्व का अभिमान और उसकी प्रधानता बनी रही। सोचना इस बात को, अपने व्यक्तित्व की प्रधानता है तब आप क्या कहते हैं कि यह मेरा घर है, यह मेरा पद है, यह मेरा विचार है, ये मेरी संतान है, ये मेरी बहादुरी है, यह मेरा परिश्रम है। वहां क्या है? अपने व्यक्तित्व की प्रधानता है। तो ये जब तक जोरदार था, पढ़ने लिखने का सहारा, जिज्ञासु होने का एक आभास कि मैं बड़ा भारी जिज्ञासु हूँ, साधक होने का आभास मैं बड़ा भारी साधक हूँ, ये अच्छी अच्छी बातें भी अच्छे अहम रूपी अणु को पोषित करती रहती हैं, मोटी बनाती रहती हैं, सत्य से दूर रहता है आदमी। तो इसकी प्रधानता जब तक थी तब तक मैं इस भाषा में अपने को समझाती रही कि अरे तुमको अब कुछ करना नहीं है, कुछ खोजना नहीं है, जिससे मिले बिना कहीं आराम है नहीं, वो तो तुम्हारे ही भीतर है। और जब संत की कृपा से, उन महामहिम की महिमा से, उनकी कृपालुता से, जब उनकी विशालता का आभास होने लगा, जब महामहिम की महिमा का कुछ आभास होने लगा, तब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, तब मैं दूसरे ढंग से सोचती हूँ। तब मैं कहती हूँ कि जो भीतर बाहर सब प्रकार से भरपूर है, तो उसी में से मेरी उत्पत्ति हुई, उसी की सत्ता से अपनी सत्ता भासित होती है। तो जिसमें मैं हूँ, जो मेरा आधार है, तो अब ऐसी भाषा बन गई। और वो भी महाराज जी के ही वाक्य हैं जिनको अपने लिए पकड़ा मैंने, तो जो सर्व उत्पत्ति का आधार है वही मेरे जीवन का आधार है, जो सब प्रतीति का प्रकाशक है वही मेरे विवेक के प्रकाश का आधार है, तो उसी में मैं हूँ, उसी ने मुझे बनाया, उसी ने अपने प्रेम से संभाला, उसी ने मुझको सत्ता दी, उसी से मुझे अभिन्न होना है। तो जब ऐसा है तो कौन सा प्रयास रहेगा, कौन सी चेष्टा रहेगी, कौन सा संकल्प रहेगा, तो ये सब कुछ नहीं रहेगा। तब क्या रहेगा कि भाई अपने पास उन्हीं की दी हुई सामर्थ्य है, तो उनकी प्यारी प्यारी सृष्टि की सेवा में सधन्यवाद अर्पित कर दो, और जब प्रवृत्ति से हटने का अवसर मिले तो उसको सबसे अधिक महत्व हम लोगों को देना चाहिए।